على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. انسان اپنی زندگی میں مختلف رولز اپناتا ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کا صرف ایک ہی رول ہو. کبھی انسان بیٹا بنتا ہے تو کبھی انسان کا رول والد کا ہوتا ہے، کبھی وہ شاگرد ہوتا ہے تو کبھی وہ استاد ہوتا ہے، کبھی وہ ملازم ہوتا ہے تو کبھی وہ باس ہوتا ہے. تو ہر شخص کی زندگی میں مختلف رولز ہوتے ہیں، اور ان رولز کے اندر وہ اپنی کارکردگی دکھا رہا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ایسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی انسان جس رول میں بھی زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ والد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ استاد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ شوہر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ روحانی پیشوا ہونے کے اعتبار سے ہو یا بادشاہ وقت ہونے کے اعتبار سے ہو، تو اتنے سارے رولز اللہ کے نبی نے اپنائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس رول میں تم دیکھو گے تمہارے لیے یہ بہترین مثال ہے. تو اللہ کے نبی جس رول میں بھی ہم ان کی پیروی کریں گے، یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک پہلو ہے معلم بننا. آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو کہ آپ استاد تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ بہترین ترین استاد سے، جس کی کوئی مثال نہیں. بہترین استاد ہوتا کون ہے؟ بہترین استاد کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کے شاگرد بھی بہترین ہو. اردو میں کہاوت ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر خود میں کمال ہے اور شاگردوں میں کمال نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہترین استاد نہیں. تو بہترین استاد وہ کہ کمال خود میں بھی ہو اور کمال شاگردوں میں بھی ہو. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شاگردوں میں کمال تھا، اس کی گواہی تو اللہ نے قرآن میں دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں. مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اور مسلمان علماء نے اور مسلمانوں نے، بلکہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ بہترین معلم تھے. چنانچہ ایک بہت بڑے مورخ ہسٹورین گزرے ہیں، یورپین ہسٹورین کا نام گبن تھا، उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पे बहुत रिसर्च की और उन्होंने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम जब आए अरब के मुल्कों में तो ये जो अरब थे ये जो लोग थे देवर इन द डेप्थ ऑफ डार्कनेस, ये जुल्मतों के अंधेरों में थे। और जब वो आए और उन्होंने तालीम दी तो वो कहता है, गिब्बन कहता है कि ये अरब की जो जमीन थी वो बन गई लैंड ऑफ हीरोज, कि ये हीरों की सरजमीन बन गई। तो बेहतरीन उस्ताद थे और बेहतरीन शागिर्द भी थे। ना सिर्फ मुसलमान ये कहते हैं बल्कि काफिर भी कहने पे मजबूर हो गए। चनाचे एक मशहूर किताब द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी तारीख इंसानियत की 100 सबसे ज्यादा पुर असर शख्सियात पे एक किताब लिखी और उस शख्स का नाम माइकल हार्ट। और उस अल्लाह के बंदे ने, वो कि मुसलमान नहीं मगर कहता है कि इस किताब में सबसे ज्यादा पुर असर शख्सियात में उसने सबसे पहले नंबर पे अल्लाह के नबी को रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हैरानगी की बात नहीं है, उसने खुद भी कहा कि हैरानगी की बात इसलिए नहीं है कि ये एक वो शख्सियत थी कि जिसके बारे में मैं ये बिल्कुल वसूक से कह सकता हूँ कि ये कामयाब थे रिलीजियस लेवल पे भी और सेक्युलर लेवल पे भी, यानी ये दुनियावी एतबार से भी कामयाब तरीन शख्सियत और ये दीनी एतबार से भी कामयाब तरीन शख्सियत। तो सिर्फ मुसलमान नहीं, काफिर और काफिरों के भी बड़े बड़े ये कहने पे मजबूर हो गए कि इनकी मुबारक जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो बेहतरीन उस्ताद वो है कि जो सिर्फ खुद कमाल वाला ना हो, शागिर्द भी कमाल वाले हो। और अल्लाह अकबर, इस माइकल हार्ट ने नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा पुर असर शख्सियत कहा। 100 बंदों की ये किताब और उन 100 बंदों में हजरत उमर भी शामिल हैं, उस्ताद भी सबसे ज्यादा पुर असर शख्सियात में शामिल, शागिर्द भी सबसे ज्यादा पुर असर शख्सियात में शामिल। तो पता चला कि उस्ताद होने के एतबार से बेहतरीन नमूना। फिर उस्ताद बेहतरीन होता कौन? और ये आजकल के उस्ताद और पढ़ाने की जो रिसर्च करते हैं लोग, वो कहते हैं कि बेहतरीन उस्ताद वो है कि जब वो पढ़ाए तो उसकी हर हर अल्फाज को समझना आसान हो, लोगों की सतह पे आके गुफ्तगू करे, ऐसी गुफ्तगू जो दिलों के अंदर बैठ जाए। अल्लाह अकबर। चनाचे नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार गुफ्तगू जो के रिकॉर्डेड हैं अहदीस के जरिए से, आप उसमें देख सकते हैं कि सहाबा कराम के दिलों पे क्या अजीब व गरीब असर पड़ता था इस गुफ्तगू का। चनाचे सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे और आप वाज कर रहे थे गुनाह को छोड़ने पर, गुनाह से तौबा करने पे। एक सहाबी को अपने गुनाह याद आए और ऐसा असर दिल पे हुआ कि रोने लगे, आवाज बुलंद हो गई। दूसरे सहाबा कराम ने उनको रोका कि ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के नबी वास फरमा रहे हैं और तुम इस तरह से जोर जोर से रो रहे हो। नबी अलैहिस्सलात व सलाम ने उन सहाबा कराम को रोक दिया, इसको कुछ ना कहो, इसने ऐसी पक्की तौबा की है, अगर इसकी तौबा को तुम सब पर तकसीम किया जाए अल्लाह ताला तुम सब की मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो कैसी पुर असर उस्ताद और कैसी पुर असर गुफ्तगू के जो दिल में पड़ती। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा और गुफ्तगू हुई कि कौन सी औरत सबसे बेहतरीन है। किसी ने कुछ कहा, اسی نے کچھ کہا. حضرت علی بھی اس مجمع میں تشریف فرما تھے, تو آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے ذرا گھر میں جانا ہے, اجازت مانگی. تو آپ کا گھر کیونکہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ, تو آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے. حضرت فاطمہ سے آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسجد میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں بتاتی ہوں کہ سب سے بہترین عورت کون ہے. سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی مرد کو عورت وہ ہے جو کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھ پائے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا کام کر کے اور مسجد میں داخل ہوئے, اور ابھی بھی وہی گفتگو چل رہی تھی کہ بہترین عورت کون ہے. حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کو بتاتا ہوں, بہترین عورت وہ ہے کہ کوئی اس عورت کو مرد دیکھ نہ سکے اور عورت بھی کسی مرد کو نہ دیکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا, علی یہ تم کو کس نے بتایا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے بتایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے, آپ نے فرمایا کہ یہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, کہ جو میں سوچ رہا ہوں بالکل اس کی زبان پہ وہی بات آ رہی ہے. تو بہترین والد وہ صرف نہیں جس سے اولاد محبت کرتی ہو, بہترین والد وہ ہے کہ جس کی اولاد اس کی منشا کو سمجھتی ہو. تو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر بہترین مثال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک اور پہلو, اور وہ پہلو کہ آپ وقت کے بادشاہ تھے. اور بادشاہ بہترین کون ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں بہترین بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس سے کم از کم 50% رعایا خوش ہو. تو آج کے ڈیموکریٹک زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 50% لوگ راضی ہیں تو اس بندے کو حق ہے کہ یہ حکمرانی کر سکتا ہے, اور اگر آدھے لوگ بھی راضی نہیں ہیں تو اس کو حق نہیں ہے. تو یہ آج کے زمانے کا اصول ہے کہ جی یہ شخص جو ہے یہ بہترین بادشاہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اس اصول کے پس منظر میں دیکھا جائے, اللہ اکبر, حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کے 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام, یعنی جتنے تھے تقریباً سارے کے سارے اس وقت موجود تھے, اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا کیا وہ مقصد میں نے پورا کیا؟ 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بالکل آپ نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا. تو 100% جو ہے رعایا راضی ہے. اچھا اچھا وہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ مختلف فرقوں اور مختلف لوگوں میں انصاف کرے, اس کے لیے امیر اور غریب برابر ہو. اور اس چیز میں کئی مرتبہ سیاستدان فیل ہو جاتے ہیں. الیکشن کے دنوں میں خوب کہتے ہیں امیر غریب برابر, سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہوگا, سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف ہوگا, مگر کئی مرتبہ اس اصول پہ پورا نہیں اتر پاتے کہ جی امیر اور غریب میں فرق نہ ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی, اللہ اکبر, عجیب. چنانچہ آپ کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی, اور اس بڑھیا نے ایک دن آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد عرض کی, اے اللہ کے نبی میں اکیلی ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, کیا آپ میرے گھر پہ آ کے اور کھانا نوش فرمائیں گے؟ غریب بوڑھیا, بوڑھی عورت, نہ اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو صحیح, اور وقت کے بادشاہ ہے. ف... फरमाया आओ तेरे घर पे चलते हैं। और उसके पास जो रूखा सूखा था उसने अल्लाह के नबी के सामने रख दिया। आपने खाना नोश फरमाया और कहा कि अब हर जुमा के रोज में तेरे घर पे ही आके खाना खाया। चुनाचे आपकी पूरी जिंदगी आप जुमा के रोज उस घर तशरीफ ले जाते। जब आपका वक्त करीब आया इस दुनिया से जाने का, तो जहां आपने और वसीयतें फरमाई ये भी फरमाया कि इस बुढ़िया के यहाँ हर जुम्मे को मैं जाता था, अब मेरे बाद अबू बकर जाया करेंगे। अल्लाह अकबर। तो ना अमीर का फर्क ना गरीब का फर्क। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, और ये सलमान फारसी अपने नाम से मशहूर फारस के रहने वाले, फारस से बुत आग परस्तिश के मजहब में थे। वालिद जो थे आग की परस्तिश करने वालों के पेशवा थे, और उनको महसूस हुआ कि नहीं ये सही नहीं है, तो उन्होंने पहले ईसाइयत अपनाई, फिर ईसाई राहिबों से एक के बाद से एक के बाद से एक के पास जाते रहे, और फिर आप गुलाम हो गए, किसी ने आपको बेच दिया, फिर आप बिकते रहे, और फिर आपको किसी एक ईसाई राहिब ने ये बताया कि मदीना मुनव्वरा में नबी आखिरुज़्ज़मान आएंगे, सच्चे नबी आएंगे, अगर मैं जिंदा होता तो मैं भी उन पे ईमान लाता। तो सलमान फारसी बिकते बिकते मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, और वहां पे एक यहूदी के गुलाम थे, और उस यहूदी आदमी से ही आपने एक दिन सुन लिया कि एक शख्स यहाँ आया है जो अपने आप को नबी आखिरुज़्ज़मान कहता है, और वो तो वैसे ही इंतजार में थे, प्यासे को पानी मिल गया। जो वक्त फारिग हुआ उसमें नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए, और नबी अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचे तो आपने नबी अलैहिस्सलाम को अपना दिल दे दिया, जो सोचा था उससे भी बढ़ के निकला। ईसाई राहिब ने आपको बताया था कि नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक कमर पे एक मोहर नबूवत है, ये भी निशानी है, और भी निशानियां बताई थी, और आप ढूंढते रहे इस निशानी को, और इस निशानी को ढूंढने के लिए एक दिन आप पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम किसी सहाबी का जनाजा पढ़ा के उनकी कब्र में तशरीफ ले गए, और आपके मुबारक जिस्म पर चादर थी, और आप अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि ये इस मोहर को ढूंढ रहा है, आपने खुद ही उस चादर को नीचे कर दिया, और हजरत सलमान फारसी ने वो मोहर देख ली, फिर ईमान ले आए, और नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत। अब दिल चाहता था कि मैं यहीं आ जाऊं अल्लाह के नबी के पास। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जी तेरा जो मालिक है वो तुझसे क्या लेके, कितने पैसे लेके तुझे छोड़ देगा। वो अपने मालिक के पास गए कि जी बताएं कितने पैसे लेंगे छोड़ने के लिए। उसने कहा कि तुझे छोड़ूंगा दो शर्तों पे। पहली शर्त ये है कि 300 खजूर के दरख्त लगा, और वो दरख्त जब फल देने लगेंगे तो तुझे छोड़ूंगा। अब 300 खजूरों के दरख्त लग के बड़े होने में 10-12 साल लगते हैं, और दूसरी शर्त इससे भी ज्यादा अजीब, 7 किलो 7 सेर सोना देगा तब तुझे छोड़ूंगा। यानी दूसरे लफ्जों में इरादा ही नहीं था छोड़ने का, 7 किलो सोना, अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के नबी ये दो शर्तें हैं, 7 किलो सोना मांग रहा है और चाह रहा है कि 300 दरख्त लगाते हैं, 300 पौधे लगाओ, वो जब बड़े हो जाएंगे फल देंगे खजूर का तो तू तुझे छुट्टी दे दूंगा। अल्लाह के नबी के पास उस वक्त इतना सा सोना कुछ आया था, एक अंडे की साइज के बराबर। आपने फरमाया ये ले जाओ और उसको दे दो, ये पूरा हो जाएगा। हजरत सलमान फारसी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी इतना तो, उसको 7 किलो चाहिए। آپ فرمایا فکر نہ کرو یہ پورا ہو جائے گا. اور فرمایا کہ جاؤ 300 گڑھے کھودو, میں خود آتا ہوں. چنانچہ آپ تشریف لے گئے. یہ چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا یہ 7 سیر کے لیے واجب الادا ہو گیا, اور 300 گڑھے اس نے کھودے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں ہر گڑھے کے اندر پودا لگایا, پودا لگانا شروع کیا, اور صحابہ کرام اس میں پانی ڈالتے. جب آپ آخری درخت پہ پہنچے تو پہلے والا پھل دے رہا تھا. اللہ اکبر. اور ساروں نے پھل دیا, نہ صرف اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کر دیا, خود بھی اللہ کے نبی کا غلام بن گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان کی نظر میں امیر اور غلام برابر. تو بہترین بادشاہ وہ ہے کہ جس کی نظر میں امیر اور غریب برابر. نعرہ تو بڑا اچھا ہے کہ میرے لیے امیر بھی برابر اور غریب بھی برابر, مگر اصل وہ بادشاہ وہ ہے جو واقعی اور امیر اور غریب کو برابر کر کے رکھا ہے. بہترین بادشاہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو صرف اپنی قوم کا خیر خواہ نہ ہو, سارے اقوام کا خیر خواہ ہو, ہر ایک کی خیر خواہی چاہتا ہو, ہر ایک کے لیے بہتری چاہتا ہو. اور ایسے شخص کو آج کے سیاستدان یا آج کی اکیڈیمیا ایسے بندے کو ورلڈ لیڈر کہتی ہے, کہ یہ صرف اپنی قوم کا لیڈر نہیں, یہ دنیا کا لیڈر ہے. اس زاویے سے دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی, آپ ورلڈ لیڈر تھے. صرف اپنی قوم کی فکر نہیں, دوسری اقوام کی بھی فکر. چنانچہ قریش کے ایک بہت بڑے سردار آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں. اب آپ اس کا بڑا روب اور دبدبا تھا, سارا پانی اس کے ہاتھ میں تھا, اور اس نے کہا کہ ان کو اس وقت تک پانی نہیں دوں گا جب تک کہ یہ اسلام نہیں لے آئیں گے. اور ابھی وہ تیار نہیں تھے اسلام لانے کے لیے. ان کافروں نے خط لکھا اللہ کے نبی کو کہ جی انہوں نے پانی بند کر دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو خط لکھا کہ نہیں, ان کے ساتھ یہ والی زیادتی نہ کرو. وہ لوگ جو کہ جانی دشمن ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جی ان کی قوم کو فرق پڑے گا. اور عجیب بات یہ کہ عین جب آپ فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں, تو آپ نے پوری قوم سے, کافروں کی قوم سے کہا کہ جو بیت اللہ شریف میں پہنچ جائے گا امن پا جائے گا, جو اپنے گھر میں آ جائے گا امن پا جائے گا. مگر حیران کن بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے گا وہ بھی امن پا جائے گا. ابو سفیان تو کافر ہے, مگر آپ نے کہا کہ یہ کافروں کا سردار ہے, اس کو بڑا سمجھتے ہیں. آپ نے اس حالت میں بھی اسی کو بڑا سمجھا اور کہا کہ اس کے گھر میں بھی داخل ہو جاؤ گے تو امن پا جاؤ گے. تو یہ ورلڈ لیڈر ہوتا ہے جو صرف اپنوں کا نہیں سوچتا, ساری اقوام کے لیے کیا بہتر ہے وہ سوچتا ہے. آپ کے یہی اخلاق تھے, یہی وسعت ظرفی تھی کہ سارا عرب اور عرب کے باہر جو تھا سب کے سب اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے. تو بہترین بادشاہ بھی آپ ہی تھے. تو اگر آپ کو والد ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے, بہترین والد. اگر آپ کو معلم ہونے کی, استاد ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے, بہترین استاد. والد ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے, بہترین والد. شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے, بہترین شوہر. بہترین شوہر کون ہوتا ہے؟ عورتوں سے پوچھا جائے وہ کہیں گے بہترین شوہر ہوتا ہی نہیں ہے. مگر بہرحال بہترین شوہر کون ہوتا ہے؟ بہترین شوہر وہ ہوتا ہے کہ جس کی بیوی اس سے محبت بھی کرے, और जिस मकसद पे जिस चीज पे शौहर खड़ा है वो उसके होते हुए भी उसी मकसद पे खड़ी भी हो और बाद में भी उसी मकसद पे खड़ी भी हो, ये बेहतरीन शौहर है कि उसने जो तरगीब दी उसको मजबूती से बीवी ने थाम लिया, ये कमाल शौहर है। और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी, आप दीन की दावत देते थे, दीन पर अमल करने की दावत देते थे, दूसरों के साथ भलाई की दावत देते थे। नबी अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के कई साल बाद हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी खाला हजरत आयशा नबी अलैहिस्सलाम की जौजाए मुहतरमा और जौजाए मुताहिरा उनके घर 1,00,000 दिरहम भेजे। 1,00,000 दिरहम सुबह सुबह उनके घर में आए, आपने अपनी खादमा से कहा कि बस इसको सदका करना शुरू करो। 1,00,000 दिरहम ये आज के दिरहम भी नहीं है, उससे भी बहुत महंगी चीज। 1 दिरहम जो था वो 1 सिल्वर कॉइन होता था, तो 1,00,000 चांदी के सिक्के। और सुबह से सदका करना शुरू किया, पूरा दिन सदका करते रहे, हत्ता के शाम के वक्त 1,00,000 दिरहम पूरा का पूरा सदका कर दिया। अल्लाह अकबर, कहना बड़ा आसान है कि किसी के पास 1,00,000 दिरहम आया और फिर उसने उसको सदका कर दिया, मगर हाल क्या था कि उस दिन रोजा और मगरिब के वक्त इफ्तार का वक्त आया तो आपने उस खादमा को कहा कि जी अब कुछ खाना दे दे, इफ्तार आ गई। उसने कहा कि जी हमारे घर में तो कुछ नहीं है खाने को। तो घर में कुछ नहीं है खाने को, 1,00,000 दिरहम घर में आया और सारा का सारा सदका कर दिया। अल्लाह अकबर, ये अजीब है, ये सोचा ही नहीं जा सकता। ना किसी मर्द के बारे में ऐसी नेकी सोची जा सकती है, ना किसी औरत के बारे में ऐसी नौकीने की सोची जाती है। यानी घर में फाका है और घर में 1,00,000 दिरहम आया और आपने शाम को 1,00,000 दिरहम सारा सदका कर दिया और इफ्तार के वक्त फिर फाका आ गया। तो ये अजीब व गरीब, इससे ज्यादा कामिल शौहर नहीं हो सकता और इससे ज्यादा कामिल बीवी नहीं हो सकती कि जो तालीमात दी उस पे ऐसा अमल किया कि ऐसा अमल करने वाला नजर ही नहीं आ सकता। तो अगर इस जाविये से देखा जाए तो बेहतरीन मिसाल है अल्लाह के नबी बेहतरीन शौहर की हैसियत से, अल्लाह की मौजूदगी की एक रोल, अल्लाह के नबी का एक रोल जो था वो रूहानी पेशवा होने का भी था। और रूहानी पेशवा, रूहानी पेशवा कामयाब कौन सा होता है जी? कामयाब रूहानी पेशवा वो कि जिसके मुरीद जो हैं उनमें इखलास भी हो और अमल भी हो। यानी उसके ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो बस उसके जुड़े हुए लोग ना हो, वो उनको अल्लाह से जोड़ने वाला हो, तो खूब इबादत भी नजर आए और खूब इखलास अल्लाह के लिए इबादत करने वाले नजर आए। अगर इस जाविये से देखा जाए, अल्लाह अकबर, आपके जो मुतालिकीन रूहानी पेशवा होने की हैसियत से ये सहाबा इकराम की जमात, और सहाबा इकराम की जमात के तकवे की तो शहादतें अल्लाह ने कुरान में दी कि ये मुत्तकी जमात है और अल्लाह ने फरमाया इस जमात से हम राजी हैं। मगर अजीब इनकी शान थी इन सहाबा इकराम की। चुनाचे एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया, रात की देर का वक्त हो गया, आपने दो सहाबा कराम से फरमाया कि हम सो रहे हैं, तुम दो पहरा दो और हमें फजर के वक्त जगा भी देना। और ये दो में से दोनों ने फैसला किया कि हम भी थके हुए हैं, ऐसा ना हो दोनों सो जाएं, तो एक थोड़ा सा आराम कर ले, दूसरा थोड़ी देर बाद उसको जगा दे। फिर दूसरा थोड़ा आराम कर ले तो पहला उसको जगा दे। ये तरतीब दोनों ने आपस में बनाई। अब एक आराम के लिए लेटे, दूसरे ने कहा कि मैं यहां खड़ा हूं तो मैं नफल अदा करता हूं, नमाज पढ़ना शुरू की और नमाज इस सुरूर के साथ पढ़ी। और दूर काफिर थे क्योंकि मारका हो रहा था अभी, उन्होंने देखा कि जी एक शख्स कोई लगता है खड़ा है या कोई सुतून है, इस अंदाज से वो खड़े थे और इतनी देर से खड़े थे कि उधर से काफिर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उन्होंने तीर मारा और तीर आके आपके सीने में लगा। इसके लगने की भी उनको फिक्र ना हुई, इस अंदाज में नफल अदा कर रहे थे। फिर और तीर मारे, फिर और तीर मारे, हत्ता के खून बहने लगा। आपने फिर नमाज जल्दी से मुकम्मल की और दूसरे साथी को उठाया। उसने कहा ये तेरा क्या हाल हो गया? मैंने कहा कि जी तीर आए और लग गए। सच्ची बात यह है कि इबादत में वो मजा आ रहा था अगर जो जिम्मेदारी अल्लाह के नबी ने दी थी आपकी हिफाजत की उसकी फिक्र ना होती तो तीर खा खा के मर भी जाता, नमाज खत्म ना करता। कैसे नमाज का शौक था! और ये शौक कहां से पैदा हुआ? सहाबाए कराम को तो पता भी नहीं था नमाज कोई चीज है, अल्लाह के नबी ने आके बताया। तो कामयाब रूहानी पेशवा वो है कि जिसके मुतालिकीन इबादत भी खूब करें और इखलास वाली इबादत करें, खालिसतन अल्लाह के लिए इबादत करें। चनाचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु दौर खिलाफत और आपके दौर खिलाफत में आपने रजिस्टर बनाया हुआ था, गरीबों की, बीमारों के और ज़ईफ़ों का एक रजिस्टर था, जिस रजिस्टर में आप उन सारों के नाम लिखते और उनकी खिदमत के लिए लोगों को लगाया हुआ था कि जो बीमार है और जो बूढ़ा है, जो ज़ईफ़ है, उसकी खिदमत के लिए कोई ना कोई जो अपना नाम लिखना चाहे उनके नाम के आगे नाम लिख देता। वो रजिस्टर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उठाया और उन्होंने देखा कि एक लंबी लिस्ट बनी हुई है ज़ईफ़ों की, बीमारों की, हर एक के सामने खिदमत गुजार का नाम भी लिखा हुआ है। एक बूढ़ी औरत है उसके नाम के आगे किसी खिदमत गुजार का नाम नहीं लिखा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि इसकी खिदमत मैं करके आऊंगा, फिर सोचा कि नाम नहीं लिखूंगा ऐसा ना हो लोग तारीफें शुरू कर दें कि जी उम्र हो के और इतना छोटा काम किसी बूढ़ी की खिदमत कर रहा है। तो सोचा कि बस खामोशी से जाके खिदमत कर दूंगा, इखलास। और कैसा इखलास! और फिर सोचा कि लोगों को पता भी ना चले। दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ते ही उस बुढ़िया के घर पे गए, दस्तक दी, और दस्तक दी तो बुढ़िया की आवाज आई कि कौन है? फरमाया खादिम है, सफाई करने के लिए आया हूँ, खिदमत के लिए आया हूँ। आगे से बुढ़िया जवाब देती है कि खिदमत करने वाला तो आकर खिदमत करके चले गया है। बड़े हैरान हुए कि अच्छा कोई और भी है जिसने नाम नहीं लिखा और खिदमत करने आ गया है, और वो भी ऐसे वक्त में आया कि किसी को पता ना चल सका, और बुढ़िया को भी नाम नहीं पता कि वो कौन है। अगले दिन सोचा कि अच्छा ये तो मुकाबला हो गया, मैं फजर से पहले आके खिदमत कर लूंगा। तो अगले दिन फजर से वक्त से पहले आ गए, तहज्जुद के औकात में पहुंच गए, घर पे दस्तक दी, बुढ़िया ने आवाज लगाई, जी कौन है? कहा जी खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। बुढ़िया ने कहा कि खिदमत करने वाला तो खिदमत करके चले गया है। अब ये भी उम्र थे, उन्होंने कहा अच्छा बड़ा कोई तेज शख्स है और बड़ा कोई खामोशी के साथ बहुत ही मुखलिस है, कोई कौन है? अगले दिन इशा की नमाज के बाद ही उस बुढ़िया के घर के रास्ते में बैठ गए, इंतजार में कि देखूं तो सही कौन ये शख्स है जो ऐसी खामोशी से इस बुढ़िया की खिदमत कर रहा है। अल्लाह अकबर! रात गुजरती गई, सारे सोते गए, सर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, पूरा शहर सोया हुआ है। हजरत उमर उस औरत के घर के करीब इंतजार में है कि कौन आता है। बिल्कुल जब रात अंधेरी हो गई तो किसी शख्स के पैर की आहट की आवाज आई। जब वो करीब आया तो आपने आवाज लगा दी कि कौन हो तुम। आगे से जवाब आया, अबू बकर हो। आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आप हैं, आप इस बुढ़िया की खिदमत करते हैं। फरमाया, हाँ, मैंने सोचा कि इसके लिए किसी ने नाम नहीं लिखा तो मैं ही इसकी खिदमत कर दूं। हजरत उमर ने पूछा कि आपके पैरों में तो कोई जूती भी नहीं है। तो फरमाया कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे पैरों की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल आ जाए। अल्लाह अकबर। ये कामयाब रूहानी पेशवा कि जिसके मुतालिकीन ऐसे इखलास के साथ इबादत करते हैं कि जिनके दिल में कोई और गर्ज न कोई और मर्ज। जो कामयाब रूहानी पेशवा उसके मुतालिकीन अमल भी खूब करते हैं और उसके मुतालिकीन इखलास के साथ। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो मेरे साथ दाखिल हुआ। जब गौर से देखा तो हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान थे। मैंने कहा, ये दाखिल हुए हैं और मैंने देखा कि इन्होंने नफल अदा करना शुरू की और सूरे और कुरान पाक सूरे फातिहा से शुरू किया। मैं बैठा रहा, देखता रहा, दो रकत में उन्होंने पूरा कुरान पाक पढ़ दिया। अल्लाह अकबर। तो कामयाब रूहानी पेशवा वो है कि जिससे ताल्लुक रखने वाले अल्लाह से जुड़े हुए हो और उनका इखलास भी अजीब हो। कहते हैं कि कामयाब रूहानी पेशवा वो भी है कि जिसके ताल्लुक रखने वाले उससे मोहब्बत रखे हैं और कामिल मोहब्बत रखे हैं, यानी ना सिर्फ उनकी जिंदगी में मोहब्बत रखें अपनी जिंदगी के भी आखिरी सांस तक मोहब्बत रखें। ये कामिल रूहानी पेशवा। और इस जाविये से देखा जाए, अल्लाह अकबर। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो आपने अपनी बेटी को बुलाया हजरत आयशा को और कहा कि मुझे भी उतने ही कपड़ों में दफनाना जितने कपड़ों में नबी अलैहिस्सलाम को दफनाया है। यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी उनको नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है वो ही याद रह रही है। फिर पूछते हैं बेटी से कि क्या तुझे याद है कि कौन सा वाला दिन था कि जिस दिन इंतकाल हुआ था। तो ये दिल भी था कि मेरा इंतकाल भी उसी दिन हो। फिर दिल में ये भी शौक था कि जी मेरा इंतकाल भी उसी दिन हो और मुझे दफनाया भी उनके साथ ही जाए। मगर ये कहना कि मुझे इनके साथ दफना दो तो ये अदब के खिलाफ महसूस हुआ। तो बेटी से कहते हैं कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरे जनाजे को नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हुजरे के बाहर रख देना, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना, अगर कोई ऐसे आसार नज़र आए कि अंदर से इजाज़त मिल रही है, कोई निशानी मिल जाए तो अंदर दफना देना, और अगर नहीं कोई ऐसा असर नज़र आए तो जन्नतुल बकी में ही दफना देना। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने आपके मुबारक जनाजे को नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे मुबारक के बाहर रखा। आपके हुजरे पे ताला था और किताबों में लिखा है कि वो ताला टूटा, दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, उदखुलुल हबीब इला हबीबी, कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त के पास दाखिल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। कामयाब रूहानी पेशवा वो है जिसकी और जिसकी मोहब्बत जो है वो उसके ताल्लुक वाले की जिंदगी की आखिरी सांस तक उसके साथ रहे। तो आपकी मुबारक जिंदगी की जिस झलक को देखा जाए हर अदा में अल्लाह ने बेहतरीन नमूना रखा है। इसीलिए सहाबा किराम आपके दीवाने थे। बाहर से रूम के बादशाह ने अपना नुमाइंदा भेजा और उसने कहा कि देख के आओ कि क्या मामला है यहाँ पे, ये कौन आदमी है जो अपने आप को नबी भी कहता है और अपने इलाके का ये बादशाह भी है। और वो वापस गया तो उसने कहा कि जी ना ऐसा बादशाह कभी देखा है ना ऐसा शख्स कोई कभी देखा है कि जिससे मोहब्बत करने चीज किसी इस अदब के साथ बैठे हैं कि मैंने कभी जिंदगी में किसी बादशाह का ऐसा अदब नहीं देखा। तो जिस जाविये से आपकी मुबारक जिंदगी को देखा जाए उस जाविये से ही जिंदगी कामयाब है। मोमिन का ये हक बनता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने प्यारे महबूब के कदमों के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब की एक एक सुन्नत पर शौक से अमल नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उन पर कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और बार बार अपने प्यारे महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए सब जरा मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका।
हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो Hello. نام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. میرے مالک اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما, اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما, اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. میرے مالک ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے, اللہ آپ کے لیے بچانا آسان ہے. میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, ہواؤں حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما, لطاعات کی عزت نصیب فرما. میرے مالک اپنی سچی محبت نصیب فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما, اللہ ان کی ہر ہر مبارک سنت پر شوق سے عمل نصیب فرما, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما. میرے مالک میں نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, اللہ نیک نہ بن سکا اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما, اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی تبدیل فرما, اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما. میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, आपके तो हमारे जैसे अरबों खरबों हैं मेरे मालिक, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। ला अपने दर से दूर न फरमा, ला अपनी रहमत का साया अता फरमा। है अल्लाह, हम मानते हैं हमारे आमाल तो ऐसे हैं कि हमारी दुआओं को फटे हुए कपड़े की मानिंद मुंह पे मार दिया जाए, मगर मेरे मालिक आपके नेक बंदों के महफिल में है। अल्लाह अपने नेक बंदों के तुफैल हमारे भी उठे हुए हाथों को कबूल फरमा। अल्लाह हम तो तेरे लुटे हुए बंदे हैं, अल्लाह कभी शैतान लूट के ले जाता है, अल्लाह कभी हमारे नफ्स हमें लूट लेता है मेरे मालिक, कभी कोई गुनाह कर बैठते हैं, अल्लाह कभी कोई नाफरमानी कर बैठते हैं मेरे मालिक, हमारे लिए अब अल्लाह हम तो तेरे लुटे हुए बंदे हैं, और अल्लाह हमने तो आम लोगों को देखा कि लुटे हुए लोगों को लोग देखते हैं, उनके साथ खास मेहरबानी का मामला फरमाते हैं। अल्लाह आप तो सबसे बढ़कर मेहरबान हैं, अल्लाह हम लुटे हुओं के हाल पर रहम फरमा, अल्लाह लुटे हुओं के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह जैसा आप हमसे राजी होते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक अपनी रहमत का साया अता फरमा, अल्लाह अपनी रहमत का साया अता फरमा, अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे इस शहर की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें बार बार अपने घर का दीदार नसीब फरमा, अल्लाह अपने प्यारे महबूब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे अजीज अकारिब रिश्तेदार मशाइख असातिज़ा वालदैन जो भी इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमा, अल्लाह जिनकी मगफिरत फरमा दी अपने कुर्ब के आला दरजात नसीब फरमा। अल्लाह हम उस दौर में जिंदा हैं जहां हमने आपके महबूब को नहीं देखा। अल्लाह आपने कुरान पाक में फरमा दिया कि कुछ लोगों को हम क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे, अल्लाह हमें उन क़यामत के दिन अंधा उठने वालों में ना फरमाना। अल्लाह ऐसा ना हो यहाँ भी दीदार से महरूम और वहाँ भी दीदार से महरूम, अल्लाह इस दोहरी महरूमी से हिफाजत फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन अपने प्यारे महबूब के झंडे के नीचे जगह नसीब फरमा, अल्लाह उनके मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। मेरे मालिक उनकी शिफात से हमें भी बहरामंद फरमा। अल्लाह अपनी रहमत का साया अता फरमा, मेरे मालिक जो मांगा वो भी अता फरमा, अल्लाह जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके अल्लाह वो भी अता फरमा, अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा अल्लाह उनको भी इन दुआओं में शामिल फरमा। अल्लाह अटके हुए कामों का होना आसान फरमा, अल्लाह उलझे हुए कामों को अपनी रहमत से सुलझा। अल्लाह हमारे बड़े उस्ताद हजरत मौलाना निसार साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन برحمتك يا أرحم الراحمين.
ضروري اعلان سماعت فرما لیجیے.